Shanti. अमृत वेले की पूर्व तैयारी के लिए किन किन बातों पर अटेंशन रखने की जरूरत है? वैसे भी हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसमें सक्सेसफुल होना है तो उसकी पूर्व तैयारी करना बहुत आवश्यक होता है। अगर बिना किसी योजना के, बिना किसी तैयारी के किसी कर्तव्य में हम लग जाते हैं तो जो सफलता हमें मिलनी चाहिए उसमें थोड़ा मुश्किल अनुभव होता है। विधिवत कोई योजना अनुसार कार्य करते हैं तो उसमें सफलता भी समय पर मिलती है, मुश्किल भी नहीं होती, आसान लगता है। उस कार्य के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती, कितने समय में करना है, किस किस का सहयोग चाहिए, वो सारी बातें पहले से तय की जाती हैं। इसी तरह जो अमृत वेला है ये सारे दिन का फाउंडेशन है। जो घंटे डेढ़ घंटे का समय होता है अमृत वेले का मुख्य रूप से, उसको हम पूरी तरह से कैसे सफल करें, इस सारे दिनचर्या की जो भी हमारी क्रियाकलाप है उन पर आधारित होता है कि अमृत वेले हमें क्या करना है, कौन से संकल्प करने हैं। क्योंकि सारे दिन में अमृत वेला ही एक ऐसा समय है या नुमा शाम का जो हम कर्म से बिल्कुल निवृत्त होते हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि अमृत वेला हमारा सफल हो। जो परम सुख की अनुभूति करने का समय है वो एकमात्र अमृत वेला है। तो उसके लिए सारे दिन में कर्म करते हुए हमें कैसे अटेंशन रखना है या संकल्प कौन कौन से करने हैं, संबंध संपर्क में आते हम कितनों को दुआएं दे रहे हैं, ताकि अमृत वेले हमारे संकल्पों पर किसी का भी प्रभाव ना हो। हमारे संकल्प और बाबा के संकल्पों में जो बाबा के महावाक्य हैं उनमें हमारी समानता कहाँ तक बढ़ी है। जितना जितना हम दोनों में समानता आती जाएगी हमारे संकल्पों में और बाबा के महावाक्यों में, उतना फिर योग भी हमारा सुगम हो जाएगा। दूसरा, अमृत वेले के लिए बाबा ने तो वैसे कहा है कि सारा संगम युग ही अमृत वेला है, फिर भी अमृत वेले जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है वो केवल अमृत वेले ही, उस समय जो योग के हम विभिन्न अभ्यास करते हैं उनका अभ्यास भी सारे दिन में करना अति आवश्यक है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए इंद्रियों से परे रहने का अभ्यास, अर्थात अशरीर बनने की जो ड्रिल है, अशरीरीपन का अभ्यास है, सारे दिन में हम कितना करते हैं, जो कल भी बाबा ने कहा निर्लिप अवस्था अर्थात आत्म अवधानी स्थिति। क्योंकि सारे योग का जो फाउंडेशन है वो हमारा आत्मा के ऊपर ही केंद्रित होता है, सारा पुरुषार्थ ही हमारे इस देह से डिटैच होने का है, सारी दुनिया से विस्मृत होने का है, और वो केवल एक अशरीरपन की ड्रिल या बार बार इस बॉडी से निकलकर परमधाम में बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति का अनुभव करना, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, पांच रूपों का अभ्यास करना, प्रकाश देना, सारे दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से मन को उस दिनचर्या में बिजी रखना, जैसे प्रकाश देने के जो विभिन्न अभ्यास हैं, जैसे पांच प्रकृति के पांच तत्वों को प्रकाश देना। तो सारे दिन में हम कितना समय कहाँ हम गुजार रहे हैं वो सारा फिर उसका इफेक्ट हमारा अमृत वेले पर होता है। अगर हमारे मुख से कहीं ऐसे कोई बोल निकल जाते हैं जिसको जिस जिन बोल से दूसरों को हम दुख मिलता है, या बाबा ने कहा ना, रंज करते हैं, नाराज करते हैं। एक तो है दूसरों को रंज करना, नाराज करना, दूसरा है स्वयं को भी कहीं हम रंज तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी स्वार संस्कार हमारे पुराने जो उजागर हो जाते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं, फिर भी वो हमारे अंदर हैं, अगर वो उजागर होते हैं तो उनको भी हमें साक्षी होकर देखना है। जैसे चर्चा की ना एक दो दिन पहले, कोई भी हमको संकल्प जो आ रहे हैं, चाहे संकल्प है, विकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, उनको भी जैसे हमको डिटैच होकर देखना, साक्षी होकर, उन संकल्पों का भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो। अगर बाई चांस कोई व्यर्थ संकल्प चलते भी हैं, या कोई स्वार संस्कार ऐसा है जिनसे हमारी मानसिकता दुख की अनुभूति कर रही है, तो जो बीत गया उसको भी हमको बिंदी लगा देना है, उसके ऊपर भी ज्यादा चिंतन नहीं करना है, ज्यादा पश्चाताप नहीं करना है, हालांकि उससे पाठ सीख कर आगे बढ़ना है। वो भी एक परीक्षा है। जैसे कल वरदान में था, एक तो है दूसरों से परीक्षा आना, परिस्थितियों से परीक्षा आना, लेकिन सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है वो है स्वयं से परीक्षा जो आती है, स्वयं के स्वार संस्कारों पर। जब हम जीत नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो वो परीक्षा बहुत अहम होती है। दूसरों के स्वार संस्कार को तो हम फिर भी जान लेते हैं कि ठीक है, इनका स्वार संस्कार ऐसा है, उनको क्रॉस करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो स्वयं के स्वार संस्कार है, स्वयं का जो चिंतन है, या कोई व्यर्थ संकल्पों का जो तूफान है, कई बार जो ना चाहते हुए दूसरों को देखते हुए आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बाबा की श्रीमती ये कहती है, उस अनुसार ही हो नहीं रहा है कर्तव्य, तो स्वयं को भी साक्षी होकर देखकर उन परीक्षाओं से पार होने का जो तरीका है, वो भी हमको स्वयं के ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है। वैसे तो बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात्रि तक दिनचर्या हम सबको बताई है, फिर भी अपने सेवा अनुसार, अपने स्थान अनुसार, संबंध संपर्क में आते हुए हमको अपनी दिनचर्या खुद ही सेट करनी चाहिए, और दिनचर्या हमारी रोचक होनी चाहिए, ताकि उसमें मन हमारा जल्दी एकाग्र हो सके, मन उसमें रुचि, मन में जो रुचि पैदा हो जाए, तो ऐसे ऐसे बाबा के जो श्रेष्ठ संकल्पों का जो खजाना है, उनको हम जितना अपनी बुद्धि में हम एकत्रित करके रखेंगे तो वो समय पर काम करेगा, और रोज हम उसको बार बार दोहराते रहेंगे, दोहराना है बार बार, उनको पढ़ना है या सुनाना है, सुनना भी है, तो जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हमारे मन बुद्धि में भरपूर होते जाएगा, तो उसका इफेक्ट हमारे फिर कर्मों पर भी पड़ता है, अन्यथा फिर हम निमित्त भाव भूल जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर वो कर्मों का प्रभाव आत्मा के ऊपर जब पड़ा रहता है तो फिर योग के समय भी वही आता है, फिर हमारे बोल भी कितने सुखदायी हैं। कई बार ऐसे बोल निकल जाते हैं जो हम तो सोचते हैं हम ठीक बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले की मानसिकता वैसे नहीं होती है। जैसे किसी को अगर हम ज्ञान का पॉइंट भी सुनाते हैं, वो भी हमको सामने वाले को देखकर ही सुनाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की स्थिति कैसी है और हम भारी डोज दे रहे हैं तो वो भी अनुकूल नहीं है, वो भी प्रतिकूल है। उसमें जो दूसरों के मन से जो सूक्ष्म एक ईर्ष्या की या सूक्ष्म बद्दुआएं जिसको कहेंगे जो निकलती हैं, वो भी हमारे पुरुषार्थ में बहुत बाधक बन जाती हैं। तो किस समय किस स्थिति या किस स्थान पर हम जा रहे हैं, वहां भी हमको किस तरीके से बोलना है, अर्थात दूसरे की मानसिकता को परखने की भी हमको विधि आनी चाहिए कि कहां हमको क्या बोलना है, किस तरीके से व्यवहार में आना है। ये वाली चीजें भी अमृत वेले के ऊपर बहुत इफेक्ट करेगी। दूसरी बात, थोड़ा खान पान भी हमारा हल्का होना चाहिए। अमृत वेले का जो है, अगर हमने रात को ही भोजन भारी कर लिया तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो भी हमको खुद देखना है कितना करना है कितना नहीं करना है, क्योंकि बेहद के संगठन में रहते हैं या घर परिवार में भी रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें अपने आप को ढालना है। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें स्वयं को आगे बढ़ाने का जो मार्ग है वो स्वयं ही क्रिएट करना होगा। बाबा ने हर तरीके से हमको ज्ञान से भरपूर कर दिया है। हम ये नहीं कंप्लेंट कर सकते कि कौन सा बाबा ने हमको जो है कोई विशेष ऐसा कोई ज्ञान का बिंदु जो हमको नहीं दिया है, सब दिए हैं। हमें समय पर याद नहीं आता वो तो हमारी गलती है, तो समय पर भी तभी याद आएंगे बार बार अटेंशन रखने की जरूरत है, बार बार अपने को जागृत अवस्था में रखना है। जहां से भी हमको हमारी प्रगति के लिए जो भी ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट मिलते हैं या ज्ञान चर्चाएं होती हैं, अच्छे अच्छे क्लासेस मिलती हैं, उनको भी बार बार सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि लंबे समय से संस्कारों को परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के बाद ही हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे, अन्यथा जैसे है वैसे चलते रहेंगे। ज्ञान युग में रुचि जो होनी चाहिए उसमें वृद्धि नहीं होगी, कि जैसे आए सुना कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी ज्ञान का एक बिंदु लेकर जो हमको अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है हम सारा याद रखें, कोई एक ऐसी बात जो हमारे दिल को लग जाती है जो हमें परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करती है, उन बातों पर भी हम पूरा ध्यान रखते हुए अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते रहें, ताकि न केवल अमृत वेले बल्कि सारे दिन में हमारा जो जीवन है योगी जीवन बन जाए, योग युक्त जीवन हो जाए, दूसरों को भी प्रेरणा मिले। चर्चाएं होती हैं केवल कि दूसरों को सुनाने के बजाय जो दूसरे हमें देखते हैं वो देखने मात्र से ही सेवा हो जाती है। जितनी हमारी धारणाएं मजबूत होंगी ऑटोमेटिकली वो सेवा होती जाती है। तो एक तो अमृत वेले की पूर्व तैयारी के लिए हमारे संकल्प किस दिशा में जा रहे हैं, बाबा के महावाक्य और हमारे संकल्पों में समानता बढ़ रही है, बोल हमारे कितने सुखदायी हैं, कर्म हमारे कितने श्रेष्ठ हैं, संबंध संपर्क में आते भी हम दूसरों को कितना सुख दे रहे हैं या दुआएं कितनी जमा कर रहे हैं, ताकि छोटी छोटी बातें हमारे योग के चार्ट को बढ़ाने में मददगार बन सके। व्यवहारिकता में हमारा जो है आचरण है वो दूसरों के लिए कितना प्रेरणा स्रोत बन रहा है, खान पान की हमारी कितनी शुद्धि है, ना केवल स्थूल खान पान की बल्कि संकल्प भी एक बुद्धि का भोजन है। जितने श्रेष्ठ संकल्प हमारी बुद्धि में जमा होते जाएंगे उतना भी बुद्धि शक्तिशाली बनती जाएंगी, और जो फिर हम विजन क्रिएट करते हैं वो भी सारे दिन में बार बार क्रिएट करना जरूरी है। अगर हम केवल सवेरे साकार देने के लिए विजन क्रिएट करेंगे तो उस पर बुद्धि लंबे समय तक स्थिर नहीं रहेगी। सारे दिन में जो भी योग के विजन है भिन्न जो एक कल्पनाशील ही प्रतीत होते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हमें पूरा निश्चय चाहिए कि हम विश्व को साकार दे रहे हैं। अब विश्व दिखाई तो देता नहीं है, आत्मा दिखाई तो देनी नहीं है, सूक्ष्म धाम तो दिखाई नहीं दे रहा है, सूक्ष्म वतन, तो ये सब चीजें जो कल्पनाशील संकल्प हैं उनके ऊपर भी हमें पूरा निश्चय चाहिए, और तभी हमें उसका महसूसता तभी हो पाएगी बार बार उनके ऊपर हम अभ्यास करते रहेंगे। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, जैसे बताते हैं जो भी खिलाड़ी हैं अगर वो खेल छोड़ भी देते हैं तो फिर भी अपना अभ्यास जारी रखते हैं ताकि उनकी फिटनेस ठीक रहे, उसी तरह हमारे मन की फिटनेस ठीक रखने के लिए अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। ओम शांति। सोने से पहले जो भी हम सारे दिन के क्रियाकलाप है या जो भी हमारी दिनचर्या है तो हम बाबा को बताकर सोए, और मुरलियां भी बाबा ने एक सोने के ऊपर बहुत सारी सुंदर अच्छी मुरली चलाई है कि अगर हम सोते समय बात करते करते सो जाते हैं या जो भी आधुनिक उपकरण है आजकल, जो बात करने की जरूरत नहीं बल्कि किसी से, उन उपकरणों से हमारा बुद्धियोग जुड़ जाता है, तो उनसे भी थोड़ा किनारा करके अपने दिनचर्या जो है बाबा को सही तरीके से सार सुना के, और अमृत वेले क्या करना है सारा सोने से पूर्व ही मन बुद्धि में वो टाइम टेबल सेट करके सोएंगे, हल्के हल्के सोएंगे, बाबा के साथ सोएंगे, तो हमारा अमृत वेला फिर ठीक होगा। और ये बार बार करना है। ठीक है, और शांति।
ओम शांति। ये थी अमृत वेला से पूर्व तैयारी। अगर हमने दिनचर्या को इतने अच्छे से सेट कर दिया तो अमृत वेला की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो हमको कहा था अमृत वेला की क्या क्या समस्या है और उसका निवारण क्या है। तो अमृत वेला से पहले हम ये सब तैयारी कर लेते, फिर भी जब हम अमृत वेला बैठते हैं तो सबसे पहले तो कभी कभार अशरीरीपन या पावरफुल स्टेज का अनुभव नहीं होता। बैठ तो जाते हम परंतु ये अनुभव नहीं होता। दूसरा अमृत वेला नींद की समस्या, निंद्रा की समस्या। तीसरा अमृत वेला सुस्ती आना, अलबेलापन होना। अमृत वेला थकावट आना, बहुत टायर्ड फील होना, बहुत वीक फील होना। अमृत वेला पर पिछले दिन का प्रभाव होना। अमृत वेला की छोटी छोटी समस्याएं जैसे प्रकृति भी हम पर थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है, अगर ठंडी होगी गर्मी होगी तो वो भी हमारे योग पर इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले अमृत वेला अशरीरीपन या पावरफुल स्टेज का अनुभव क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे बताया कि दिनचर्या में अगर हम बार बार अशरीरीपन का अभ्यास नहीं करते, जैसे कहा ना अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, जब हम दिन में बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो जब हम अमृत वेला बैठते हैं तो अशरीरीपन होने में आसान हो जाता है। दूसरा दिन भर हम देखते कि हम बहुत देहबान में अगर हैं, अगर हम देह का ही चिंतन करते हैं, देह के बारे में ही सोचते हैं कि हमारी बीमारियां क्या है, या दूसरे की देह की तरफ आकर्षित होते हैं, तो पूरा टाइम अगर देह को ही देखेंगे तो डिटैच कब होंगे, तो अशरीरीपन का अभ्यास नहीं होता। बाबा ने कहा है कि अमृत वेला का दृश्य ऐसे होता है कि तीन प्रकार के बच्चे वहां बैठते हैं। एक होते हैं जो स्नेह में बैठते हैं, स्नेह निभाने वाले होते हैं। एक होते हैं जो समय निभाने वाले होते हैं, समय टाइम समय निकल जाए ऐसे लोग बैठते हैं। और तीसरे होते हैं जो संयम निभाने वाले होते हैं कि नियम अनुसार उठकर बैठ जाते हैं। तो बाबा ने काफी ऐसे बताया कि अमृत वेला एक तो अधिकारी बच्चे, अधिकारी दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक अधिकारी के रूप में बैठते और दूसरे जो होते हैं वो जैसे कि अपनी कंप्लेंट्स की फाइल खोल के बैठते बाबा के सामने कि इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया। हम समझते हैं कि हम बाबा से रूहरिहान कर रहे हैं, लेकिन रूहरिहान के बदले ये सारा सब कारोबार चलता है। या तो बाबा के सामने हम वकील बन जाते हैं, बाबा को ही बाबा के कर्तव्य बताते हैं, बाबा को ही बाबा की ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं। तो ये सब करने में अशरीरीपन का अभ्यास नहीं होता। तो जब अशरीरीपन का अभ्यास करना है तो उसका निवारण क्या है इस समस्या का, तो हम पूरी दिनचर्या पे हमारे अटेंशन रखें कि हम दिन भर क्या करेंगे, कैसे हम अशरीरीपन का अभ्यास करें। हम सेवा में काफी व्यस्त रहते हैं तो स्वयं ही देखे कि कौन सा टाइम हमको मिलता है, या दिन में 3-4 बार बैठ जाए 10 मिनट अमृत दिन में बैठ जाए बाबा के कमरे में 7 मिनट 10 मिनट 3-4 बार और अशरीरीपन का अभ्यास करें। दूसरी समस्या है निंद्रा की। ये समस्या बहुत लोगों की होती है कि नींद आती है। क्यों नींद आती है अमृत वेला? तो अमृत सबसे पहले नींद क्यों आती, सब पहले बताएंगे, हमने तो पॉइंट्स निकाले हैं। नींद क्यों आती है अमृत वेला?
कम सोएंगे तो नींद आएगी,
कम सोएंगे तो नींद आएंगी, और दिनचर्या सेट नहीं होंगी तो नींद आएंगी। खुशी का प्राप्ति का अनुभव ना होने के, या तो अमृत वेला का महत्व ना जाने तो, और रात को अगर भारी भोजन ले लिया तो, और पापों का बोझ, अगर अवज्ञा की, अगर दिन भर श्रीमत अनुसार नहीं चले तो भी ये ना नींद आएगी। तो जैसे कि पहले तो मेडिसिन खाई होगी, किसी किसी की बीमारियां ही ऐसी होती है कि उनको रात में नींद टूटती है उनकी। किसी किसी की बीमारी ऐसी होती है कि रात में कोई ऐसी नींद की दवा लेते हैं जिससे साइड इफेक्ट होता है कि नींद आती है उससे। सब कुछ ठीक है लेकिन क्योंकि बीमारी है, क्योंकि दवा ले रहे तो नींद आ रही है। और जैसे कि शारीरिक बीमारी की वजह से थकावट होना,
तो दवाई की व्यवस्था नींद लेकर तो माफ कर देगा बाबा, क्योंकि हम नहीं सो रहे वो तो दवाई का इफेक्ट है
क्या? गैसेस बनती तो हाँ। तो जैसे भारी भोजन अगर हमने रात में किया, हैवी भोजन खा लिया, कुछ अच्छा है तो थोड़ा ज्यादा ले लिया, तो भी नींद आएगी अमृत वेला। और लेट भोजन खाया तो भी नींद आएगी अमृत वेला, वरिष्ठ भोजन खाया तो भी नींद आएगी। और जैसे कि बता रहे कि कई बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा हमारी सेवाएं इतनी है कि हम रात में देर से सोते, किसी कोई कोई बताते कि हम इतनी सेवा करते कि 12-1 बज जाता है सोने पर। कभी कभार सेंटर पर कोई प्रोग्राम होता है, कोई सेवा होती है तो उनको सोने के लिए 12-1 बज जाते, तो कैसे उठेंगे 3-4 बजे। तो बाबा ने उसकी भी विधि बताई है। हाँ वो बताना, नींद टूटती बीच बीच में। तो जैसे कि सेवा अगर इतनी देर तक, तो बाबा ने कहा कि वो 1 घंटा आप जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, तो आपकी बुद्धि भी फ्रेश रहेगी, आपको शारीरिक तरह से भी फ्रेश लगेगा, और जो 2-3 घंटे का कार्य है वो 1 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। तो हर चीज की विधि बाबा ने बताई। और बाद में जैसे कि सूक्ष्म पाप, अगर कोई सूक्ष्म पाप है या पापों का बोझ है हमारे सिर पर, तो भी नींद आती है। तो निवारण क्या है नींद आने का? जल्दी उठ जाते हैं। कभी कभार देखते हैं दूसरे 2 बजे उठ रहे तो हम भी 2 बजे उठना चालू करते हैं, लेकिन नहीं, हम अपनी प्रकृति को समझे। ब्राह्मण जीवन में स्वयं की प्रकृति को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम दूसरे को देख के नहीं ऐसा करें कि हम भी वो करें। उसकी दिनचर्या, उसकी प्रकृति, उसका भोजन का लिमिट सब कुछ अलग है और हमारा भी अलग है। तो ऐसा नहीं कि वो 2 बजे उठ रहा है तो हम भी 2 बजे उठना चालू करें। नहीं, हमको क्वालिटी होना चाहिए हमारा योग, क्योंकि अमृत वेला को सफल कर दिया तो सारा दिन सफल है। बाबा ने कहा है कि अमृत वेला फाउंडेशन है। जैसे इमारत अगर खड़ी करनी होती है तो फाउंडेशन पर ध्यान रखा जाता है। तो अगर फाउंडेशन हमारा पक्का है तो हमारे दिन भर के कर्म और संकल्प सब कुछ श्रेष्ठ होंगे। तो एक तो जैसे कि जल्दी उठ जाते हैं तो नींद आती है। हाँ, जैसे बाबा ने कहा है कि जैसे कि आप शरीर की एक्सरसाइज करके उसको तंदुरुस्त रखते हो, तो वैसे ही बुद्धि की एक्सरसाइज, तो जैसे कि बार बार ड्रिल्स करना दिन भर में, तो नींद नहीं आएंगी अमृत वेला भी। दूसरा, स्नान करके आना है। अगर हम जैसे हम उठ तो जाते हैं शरीर से, परंतु मन और बुद्धि को भी उठाना है, उसको भी चार्ज करना है। तो एक तो स्थूल चीजें होती है कोई कोई कि स्नान कर ले या तो मुंह धो के आ जाए, सब कुछ मतलब ऐसे अपने आप को जागृत अवस्था में लाना है। ऐसे ही उठ के बेड पे से और आके बैठेंगे तो ऑब्वियसली नींद आएंगी हमको।
तो
हाँ, बाबा कहते थे पहले अगर बच्चों को नींद आती थी तो आंखों में तेल डाल दे। एक बार हम रतनमणि दादी से मिलने गए थे तो वो बता रहे थे कि हमारी चोटी ना मम्मा ऊपर ऐसे बांधती थी और अगर हम झुटके खाएंगे तो चोटी ऐसे अटकती थी। तो इतना ध्यान रखा जाता था कमरे से बाहर निकल के ठंडी हवाओं में, बाबा जैसे स्टार्टिंग में ठंडी हवाओं में लेके जाते थे। और दूसरा, जैसे कि अपने आप को लक्ष्य देना है, बिना लक्ष्य के अपने आप को नहीं बिठाना है कि आज हम ये करेंगे। ऐसे नहीं कि बस उठ के आ गए और बैठ गए। तो जैसे उठ के स्नान किया तो उसमें भी बताते हैं कि जब कभी कभार हम बाबा की जो आवाज है अव्यक्त बाप दादा की, उसकी छोटी छोटी कॉमेंट्रीज है वो लगा दे और तैयार होते तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कान में जा रहा है, तो मन में चिंतन ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है जब तक आप योग में पहुंचे, कमरे तक पहुंचे। तो ये सकते उठते ही जैसे हमने डिस्कस किया था कि वो अनुभूति की बुक या कोई भी बुक हमारे बेड के पास हो तो हम उठ के कुछ एक पैराग्राफ पढ़ ले या 5 लाइन पढ़ ले तो चिंतन स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो हमारा कुछ और चिंतन चलता है। तो क्योंकि पिछले दिन का प्रभाव भी मन पर रहता है तो वो एक कर सकते हैं। चिंतन नहीं होगा तो भी सुस्ती आती है। तो बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है कि जब मनन चिंतन कम होता है दिन भर में तब सुस्ती और नींद आती है। तो दिन भर अगर आप चिंतन करते हो ना, तो मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो वो खजाना आपके सामने आएगा, वो खुशी का खजाना सामने आएगा, तो नींद नहीं आएगी। कभी कभार जब योग में बैठते हैं और अगर नींद आ रही है, तो दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम किसी पॉइंट को लेके उस पर चिंतन करना चालू करें। चिंतन करते करते ऑटोमेटिकली योग लगना चालू हो जाता है। दूसरा, बाबा कहते हैं कि भिन्नता हो हमारे योग में, वैरायटी हो। तो एक मुरली में बाबा ने कहा है कि जब अगर हम कहें कि हम आज हम पिकनिक जा रहे हैं, तो बाबा ने कहा पिकनिक पर क्या होता है कि कुछ नमकीन भी चाहिए, कुछ मीठा भी चाहिए। तो ऐसे ही हमारे योग में भी वैरायटी होनी चाहिए, हाँ, रमणीकता भी होनी चाहिए। तो जैसे कि हम जाकर अगर बैठ गए और वही वाली कि मैं अभी जाऊंगी, एक बार पांच स्वरूप का अभ्यास, एक बार वरदान और आश्चर्य विपन्न और सकाश और आ जाओ, नहीं ऐसा नहीं। तो बाबा ने काफी विधि बताई है इसमें भी कि कभी कभी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते हो तो कभी नॉलेजफुल स्टेज का अनुभव करो, कभी प्रेम स्वरूप की स्टेज का अनुभव करो। जैसे कल बाबा ने कहा ना कि गुणों का अनुभव करो, खजानों का अनुभव करो। तो कोई एक गुण ले ले हम, एक दिन अमृत वेला गुणों के ऊपर देखे, आधा घंटा पौना घंटा हम उसी गुण पर स्थित हो जाए, उसका अनुभव करे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आपको कितने सारे टाइटल्स दिए है बाबा ने, तो उन टाइटल्स को याद करें कि वो टाइटल्स कौन से हैं, और उस टाइटल्स पे ही हमारा योग हो। कि अगर जैसे बाबा ने कहा आप नूरे रतन हो, तो नूरे रतन की विशेषता क्या है, नूरे रतन का कर्तव्य क्या है, नूरे रतन पे हम कोई कमेंट्री बनाए तो वो हम कर सकते हैं। तो भिन्नता हो हमारे योग में, वैरायटी हो हमारे योग में। दूसरा, रमणीकता हो। तो रमणीकता में भी यही, रमणीकता का मतलब यही नहीं कि बैठ के हंसे या कुछ ऐसे, लेकिन अलग अलग वैरायटी से योग करने की हमारे पास कमेंट्रीज रेडी होनी चाहिए। अगर जैसे हम यहाँ पर बैठ के बोलते हैं मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान चली ऊपर, लेकिन उस दिन बाबा ने क्या कहा मुरली में कि परम नाम की स्टेज से फिर नीचे आओ, तो ऐसे कुछ करो तो मन को भी अलग अलग चीजें मिलेगी। तो निंद्रा की समस्या में, हाँ, अगर फिर भी नींद आ रही है, अगर हम ये सब भी कर रहे हैं, तो इतना भी हो सकता है कि हम उठ के चलते फिरते योग करें। अभी हमारे पास चार धाम है यहाँ पर, तो अगर हम हमारे योग को डिवाइड कर दे कि 10-10 मिनट, 7-7 मिनट हम ऐसे योग करेंगे, या हम चलते फिरते ड्रिल्स करें। लेकिन ये पहले की स्टेज होती है, जो बहुत ऊपर की स्टेज होती है वो ये है कि एक ही स्टेज में बैठ के एकाग्र। एक बार दादी ने कहा था कि हम एक दूसरे से कंपटीशन करते थे जब हम स्टार्टिंग में योग करते थे, कि हमारे शरीर भी स्थिर होना चाहिए, एक उंगली भी, हम एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि एक घंटे में हमारी उंगली भी ना हिले। जो इतनी स्थिरता हमारी बुद्धि में, मन की, तो हमारे शरीर की भी रहेंगी उतनी। तो पहले तो चालू करें, अगर नींद आ रही है तो चले फिरे उसमें योग करें। दूसरा, कमेंट्री, जैसे कि कोई कोई गीत, कोई कोई कमेंट्री, अगर सहयोग ले सकते हैं इन सब चीजों का, अच्छी से अच्छी कमेंट्री, अच्छी से अच्छी म्यूजिक। अभी हमारा जो वर्कशॉप था ज्ञान सरोवर में, उसमें ऐसा था कि बहन जी कमेंट्री कर रहे थे और डेविड भाई म्यूजिक बजा रहे थे। कमेंट्री किसी को सुनने ही नहीं आई, इतनी सॉफ्ट थी, लेकिन म्यूजिक से ही योग लग गया सबका। जो आज म्यूजिक बजा अमृत वेला, जो हम यहाँ बजाते, वो म्यूजिक ऐसा है कि मतलब अपने आप ऊपर। तो कोई कोई म्यूजिक ऐसे होते हैं जो हमको बहुत आश्चर्यपन का अभ्यास करने में सहयोग देते हैं। कुछ बोल रहे थे, संबंधों से भी, सर्व संबंधों, तो वैरायटी। तो जैसे कि आज हम सर्व संबंधों से बाबा को याद करेंगे, तो ये कर सकते हैं,
संबंधों से लिख सकते हैं, लिखना शुरू करते हैं। बाबा मेरा तो
हाँ, हाँ, एक एक संबंध से, हाँ, मोस्टली हम बाप का संबंध से ही उसको याद करते हैं, सदगुरु के से, लेकिन कभी साजन के संबंध से याद करें, कभी दोस्त के संबंध से याद करें, कभी बेटे के संबंध से याद करें, कभी माँ के संबंध से याद करें। तो ऐसी वैरायटी रूप से हम उसको याद कर सकते हैं। दूसरा, थक, खुशी की पॉइंट, ये भी एक पॉइंट था कि खुशी की पॉइंट इमर्ज करे, कि हम खुशी का मनन करें, कि कि हम किससे मिलने जा रहे हैं. अगर आज हम अगर हम किसी को हमारा आइडल समझते हैं, या अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, या अगर हम किसी के फैन हैं, तो अगर उसके साथ हमारी मीटिंग होगी तो हमारी तैयारी कैसी होगी. हम पूरे वेल ड्रेस होंगे, हमारे कैरेक्टर वाइज सब कुछ वेल मैनर्ड जाएंगे ना उसके सामने, और कितनी खुशी होंगी कि आज हम उनसे मिलने वाले. तो ये खुशी की पॉइंट इमर्ज करें कि हम किससे मिलने वाले. हम हमेशा बाबा बाबा कहकर उसका महत्व ही कम कर देते, परंतु हमारी भगवान से मीटिंग होती है एवरीडे मॉर्निंग. तो ये हमारे अंदर एक रहना चाहिए कि भगवान हमको मिलता है सुबह सुबह. दूसरा, थकावट आना. अमृत वेला बहुत ऐसे भाई बहन होते हैं जो उठ जाते अमृत वेला, मतलब उनका नियम है कि उठना है, लेकिन उठने के बाद जब वो जाके बैठते हैं तो कहते हैं कि हमको थकावट फील होती है. जबकि अमृत वेला बाबा ने कहा है, अभी इसकी भी विधि बाबा ने कही, अगर थकावट भी हो रही है तो अमृत वेला के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाएगी. एक बार 69 की मूल्य में बाबा ने कहा था कि 1 सेकंड के अष्टविधिपन के अभ्यास से थकावट दूर हो जाएगी. तो बाबा ने इसके लिए भी कहा है कि अगर मन ना लगे, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं जाए तो भी जबरदस्ती जाना है, जबरदस्ती मन नहीं लगे तो भी दिनचर्या को चेंज नहीं करना है, नियम अनुसार जाना ही है. जैसे मुरली का क्लास में जाने मन नहीं लग रहा तो भी जाना है, क्योंकि माया ट्रायल लेती है. बाबा ने कहा माया हमारा ट्रायल लेती है, देखती है कि हम कैसे हैं, हम थकावट के कारण सो तो नहीं जाएंगे, तो नियम अनुसार जाना ही है. तो थकावट क्यों होती है, उसके कारण क्या है. तो हमने सोचा थकावट, जैसे कि शरीर कब थक जाता है, जब हम कोई ज्यादा सेवा कर रहे होते हैं, कर्म में बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से है ना थकावट आई. तो बुद्धि कब थकती है, जब हम ज्यादा सोचते हैं. अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो वो बुद्धि थक जाएंगी, आत्मा थक जाती है, तो वो शरीर पर उसका इफेक्ट आता है. तो थकावट एक कारण है, जो अमृत वेला ही निकलता है सब कुछ वो बाहर. तो और जैसे थकावट के कारण, जैसे दिन अगर दिन भर हमने आलस से अलबेलेपन में रहे, जैसे बताया कि अगर दिनचर्या हमने श्रीमत अनुसार नहीं व्यतीत की, तो माया फिर हमारी जो हमने अवज्ञा की उसका बदला लेती है अमृत वेला, और थकावट के रूप में आएगा या सुस्ती के रूप में आएगा. हाँ, बाबा ने ये भी कहा है कि नींद की जो अवस्था है ना, वो जैसे कि आप सेमी मतलब उसमें ऐसा शांति का अनुभव होता है कि हम और है ना, हमको लगता है कि आज अमृत वेला बहुत अच्छा था, परंतु वो अमृत वेला नहीं, वो योग नहीं था, वो हमारी नींद की अवस्था थी. क्योंकि वो भी आपको रिफ्रेश कराएगी, क्योंकि वो आप नींद में से जागे हो, या तो आप योग करो या नींद करो, दोनों भी आपको सेम फीलिंग देती ऑलमोस्ट.
बाजू वाले
कह रहे तो जागृत अवस्था में हो तो. हाँ, बहुत बार ऐसे बाबा ने कहा है कि जैसे जयपुर का वो म्यूजियम का हमेशा उदाहरण देते हैं कि हठयोग का, कि कभी उल्टे कभी सीधे, कभी एक टांग ऊंची कभी नीची. तो बाबा ने उसमें भी कहा है कि बच्चे अपने नंबर लगाने की कोशिश करते हैं, और कई बच्चों के नंबर लग भी जाते हैं परंतु कनेक्शन टूट जाता है, फिर वो एक टांग पे खड़े हो जाते. तो ऐसे भी होता है अमृत वेला के, जाके बैठते हैं, योग लगाते, अच्छा योग लगते लगते ही फिर, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म पाप भी है. ये जो सुस्ती है, थकावट है, नींद है, कहीं ना कहीं पाप हो रहा है हमसे दिन भर में. जैसे कहा ना कि अगर हमारे बोल कड़वे हैं, अगर पीड़ादायक है, किसी को दुख देने वाले हैं, तो जरूर वो पापों का बोझ हमारा बढ़ रहा है. और फिर हम सोचते हैं कि क्यों मेरा अमृत वेला अच्छा नहीं हो रहा, मैं तो सब कुछ ठीक कर रही हूँ, लेकिन नहीं, कहीं कार ऐसे. लेकिन अगर हमने किसी को सुख दे दिया, अगर कोई दुखी आत्मा हमारे पास आई और हमने उसको सहयोग दिया, या हमने उसके चेहरे पर मुस्कान लाई, तो हमको उसका रिटर्न अमृत वेला जरूर मिलेगा. हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने किसी दुखी आत्मा को खुशी दी. तो जैसे पापों का बोझा बढ़ता है, वैसे पुण्य का खाता भी बढ़ता है, और जब पुण्य का खाता बढ़ता है तब योग बहुत अच्छा लगता है और सरल हो जाता है. तो ये भी एक देखा गया. और सबसे हाँ, जैसे एक बार बोला था ना कि अगर हमने वही बाबा का चेहरा अपने सामने लाया, वही दृष्टि, वही नैन, और बाबा जैसे दृष्टि देते, अगर वो चीज हमारे सामने आई तो भी बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा योग लगना चालू होता है. इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा योग नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अपवित्रता है हमारे पास, क्योंकि पवित्रता ही हमारा फाउंडेशन है। और हम चेक कर ले कि दिन भर हम कितना देह की तरफ आकर्षित होते हैं, कितना देहबान में रहते हैं, फिर चाहे हम कितनी अच्छे से अच्छी कॉमेंट्री लगा दे, कितने अच्छे से अच्छा स्नान करके बैठे, स्ट्रांग कॉफी पी ले, हथौड़े मार दे हम, लेकिन हमारा योग नहीं लगेगा। सर पे हथौड़े मार दे, ढोल बजा दे, तो भी कुछ नहीं होने वाला। अगर पवित्रता नहीं है तो कोई भी योग नहीं लगने वाला। तो चेकिंग करें हम, क्योंकि जैसे ही हम योग में बैठते हैं कभी कभार तो हमारा बुद्धि भटकती है, व्यर्थ संकल्प आने के बहुत चांसेस होते हैं। ये सब किसको आता है? जिसमें अपवित्रता है, क्योंकि अगर किसी से लगाव है तो उसी से योग जुड़ेगा, फिर बाबा से योग नहीं जुड़ेगा, कनेक्शन उस आत्मा से जुड़ेगा। या तो किसी के प्रति नफरत है या घृणा है तो उस आत्मा से कनेक्शन जुड़ेगा, बाबा से नहीं जुड़ेगा। और जब हम ये कमरे में बैठ के उस आत्मा से कनेक्शन जोड़ रहे हैं तो हम वातावरण को कितना दूषित कर रहे हैं। तो ये पाप नहीं होगा क्या कि दूसरी आत्माओं को भी हमारे वाइब्रेशन जा रहे हैं ना? तो हमारे पर तो बोझ चढ़ेगा अगर हम इतना व्यर्थ मां सोचेंगे। अगर जैसे अपवित्रता के संकल्प आना, क्योंकि आत्मा अभी विकार में तो नहीं जा रही ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के, लेकिन वो अपने डिजायर्स को कैसे फुलफिल करती, कैसे तृप्त करती है सोच सोच कर। तो जब हम अकेले बैठे होते तो यही सारे संकल्प जैसे मन में उत्पन्न हो रहे, तो हम वातावरण को दूषित कर रहे, तो वो भी बोझ हम पर चढ़ रहा है। तो ये सब भी है जो पवित्रता फाउंडेशन है हर योग का। और लास्ट में जैसे हमने छोटी छोटी पॉइंट्स भी निकाली थी कि अमृत वेला पिछले दिन का प्रभाव पड़ना, तो जैसे कि भाई जी ने कहा कि अमृत वेला सोने से पहले जिस स्थिति में हम सोएंगे उस स्थिति में ही हम उठेंगे। तो जैसे बाबा ने इसकी भी विधि बताई है, अगर कहीं भाई बहन ऐसे बोलते कि अभी हमको टाइम ही नहीं मिलता, तो रात में ही तो समय मिलता है एक दूसरे से बात करने का, तो बात कर लेते हैं। लेकिन बाबा ने विधि बताई कि अगर आपको बहुत जरूरी काम है और बात करना ही है तो कमरे के बाहर जाके बात करो, सेकेंड में उसको फिनिश करो और फिर आके अपने बिस्तर पे सो। बिस्तर पे सोते सोते बात करते करते नहीं सोना है, नहीं तो वही स्थिति में हम उठेंगे। अगर किसी से फोन पे बात करते करते सोएंगे तो मॉर्निंग में जब उठेंगे तो पहला विचार वही आएगा जो उस व्यक्ति से हमने बात की थी। तो सोने से पहले की विधि, पिछले दिन का प्रभाव, अगर किसी से हमारा मन मुटाव हो गया है तो वही प्रभाव हमारा इधर होता है। इसीलिए पोता में लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा कि अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है वो हल्का होके बाबा को देके सो जाओ, और अकेले नहीं सो, बाबा के साथ सो। क्योंकि कई भाई बहन कहते हैं कि हमारे स्वप्न अपवित्र होते कभी कभार, तो आपके स्वप्न अपवित्र नहीं होंगे अगर आप बाबा के साथ सो जाएंगे, बाबा को सब कुछ देकर उसकी गोदी में सो जाओ। तो हर विधि बाबा ने बताई है। छोटी छोटी बातें जैसे कि प्रकृति, अगर बहुत ठंडी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, तो भी कोई कहते हैं कि अमृत वेला उठ तो जाते हैं लेकिन योग नहीं लगता, तो उसके लिए हम अपने लिए खुद ही ढूंढ ले कि अगर ठंडी लग रही है तो कमरे में जाके बैठे, बाबा के बाहर ठंडी हवा में ना बैठे, अगर गर्मी लग रही है तो हवा में जाके बैठे। तो फिर हमने छोटी छोटी पॉइंट्स ऐसी डिस्कस करे, तो जैसे मच्छर वच्छर निकलते अमृत वेला योग तो कर रहे सब कुछ अच्छा है लेकिन मच्छर अच्छर काटते, तो उसके लिए भी हम अपनी जगह ढूंढे कि हम कहाँ पर ऐसे बैठ के योग करें जहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम ना हो हमको। तो लेकिन
वरदान का समय है, वरदान से ही हमारा जन्म हुआ, वरदानों से ही हम पलते हैं,
मच्छर आए तो
लेने का समय है और वरदान सबको देने का समय है।
तो लास्ट वो सब तो डिस्कस हो गया वरदानों का समय। ये तो एकदम छोटी सी प्रॉब्लम है जो बहुत लोग बोलते हैं कि है ना कैसे योग लगाए ये मच्छर काटते, लेकिन हमने एक बार ऐसी एक्सपेरिमेंट करके देखा, जैसे कि जब हम बहुत अशरीरी हो जाते हैं तब पता ही नहीं चलता कि मच्छर, लेकिन जब 4:45 बनते हैं तो हाथों पे पूरा ऐसे भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको हमारी प्लेस ढूंढनी है, क्योंकि हम माउंट आबू में रहते हैं तो यहाँ पे प्रकृति जैसे एक्सट्रीम में जाती है, कभी कभार बहुत ही बारिश होती है, बहुत ही ठंडी होती है, तो हमको पता होना चाहिए हमको कहाँ जाके बैठना है। दूसरा, कई भाई बहने कहते हैं कि हमारी फिक्स्ड जगह होती है अमृत वेला करने की, तो ये भी ना हो, हमारा हम योगी हैं, हम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही जगह पे बैठेंगे तो योग लगेगा। एक दिन हम शाम को योग कर रहे थे और एक भाई आए, जब इतनी जगह थी कुटिया में तो भी वो आया और मुझे उठाया, तो तो हम सोच रहे अरे ये क्या है मतलब। तो कितना हम अगर हम हमारे बुद्धि में इतना क्या बोलेंगे
नहीं,
रिजिड। हाँ हम तो फ्लेक्सिबल है, वो नहीं है, मैं वो बात नहीं कर रही, वो नहीं बात कर रहे, हम हमारी बात कर रहे कि हम कितने फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस वही जगह मिलेगी तो ही योग लगेगा, बहुत लोगों का ऐसा होता है, बहुत लोगों का ऐसा होता है उनको ठंडी लग रही है, दूसरे को गर्मी लग रही है तो फैन चालू। एक दिन अमृत वेला एक जोर से भाई ने चिल्लाया कि क्या है सुबह सुबह फैन चालू करके रखा है, सब योग कर रहे हैं और उसमें ये आवाज आ रही है, तो सबको उन्होंने अलर्ट किया। तो ये भी एक होता है। दूसरा, कई भाई बहने कहते हैं कि हम बिना कॉफी चाय के योग नहीं कर सकते। एक भाई हमारे ओपीडी में आए थे तो उनको कहा कैसा चल रहा है सब कुछ योग, हाँ मैं थोड़ा यहाँ पे योग करता हूँ फिर मधुबन चला जाता हूँ। तो कहा क्यों यही योग नहीं कर सकते? नहीं, मधुबन चले जाते तो गर्म पानी मिल जाता है, चाय मिल जाती है, तो थोड़ा योग भी अच्छा लगता है। तो हम साधनों पर आधारित ना हो, आगे जाके ये नहीं मिलेगा, आगे जाके गर्म पानी मिलेगा पानी पीने को, तो भी योग लगना चाहिए। तो हम अपने आप को चेक कर ले कहाँ कहाँ हमारे वैक्यूम है, कहाँ कहाँ हमारे डिफेक्ट्स है और उसको फिल करें। जैसे दूसरा, जैसे कि हम बैठे रहते हैं, माताएं कभी कभार चलती है और ऐसे धम से आके बैठती है, या तो फिर हम बैठे और नीचे बैठे और योग कर रहे और जाते जाते धक्का मार के गोद में, हाँ बस गोद में ही आके बैठेंगे या तो धक्का मारेंगे, इतनी जगह होती है तो भी धक्का मारेंगे, अपने बैग का उनको ध्यान नहीं होता, चलते चलते सिर पे बैग लग के उनके हमारे जाते, हम परमधाम पहुंच ही रहे थे कि हमको नीचे लेके आते वो। तो ये सारी चीजें होते हुए भी, मतलब ये सारी अमृत वेला की या कोई भी योग की समस्या है कि ये होगा ही, तो ये सब रहेगा ही, क्योंकि हम संगठन में हैं। दूसरा, हम देखते हैं, हम जैसे मधुबन में रहते हैं तो हमारे लिए 6 महीना सीजन होता है, 6 महीना भट्टी होती है, तो हमको लगता है कि कब हम अकेले बैठ के योग करें, कुटिया में हमको मतलब आधा एक घंटा मिले, नहीं मिलेगा वो। आप संगठन में हो, आपको सिर्फ 5-7 मिनट वहां बैठना, पीछे से आवाज आती है सब उठ के मेडिटेशन हॉल में जाओ। तो ये सारी चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए।
कई बार कुर्सी पर बैठे होते हैं बुजुर्ग लोग, आते हैं सोफे पर हम बैठे हैं, तो हम बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बीच नीचे बैठ रहे हैं,
हाँ,
और उसको भी देखने,
हाँ,
आज भी ऐसा बाबा तो उन्होंने बुजुर्ग बैठा 90 साल का होगा और सोफे पर बैठे, माताएं भी जो नीचे बैठ सकते हैं, बैठे हमको ध्यान रखना चाहिए
जगह जगह। कोई कोई जैसे हम शांति स्तंभ से योग कर रहे होते तो परिक्रमा लगाते गोल गोल गोल, अरे 4 से 4:45 क्लास में भी अनाउंस किया था शशि बहन ने एक बार कि बड़े परिक्रमा लगाओ लेकिन 4:45 के बाद लगाओ। ऐसे नहीं कि सब योग कर रहे हैं और उसके बीच में आप गोल 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 घूम रहे वहाँ पर, तो ये सारी चीजें,
चंद्री के पास खड़े करके,
हाँ चंद्री के पास खड़े रह के योग करना समस्या है। तो ये सारी किसी की कोई और समस्या तो यही हम उसका निवारण निकाल दे। हाँ वही, पूरी बैग खोल के बैठते कभी कभार वही। और कुछ ओम शांति okay,